تفسير يسألونك عن الأهلة، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، قل هي مواقيت للناس والحج، آپ ان سے کہیے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کی تعین کے لیے ہیں. یہاں جو ہے جو خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان کی ایک بڑی خاص صفت کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کی خاص صفت کیا تھی کہ وہ کائنات کے نظام پر غور و فکر کرتے تھے، وہ سوچتے رہتے تھے کہ یہ سب جو ہے یہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیوں پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ مومنین کی یہ صفت جو ہے وہ قرآن میں جا بجا اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن میں یہ بات فرماتا ہے کہ جو مومن لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جو آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو جو ہے وہ فضول اور بے مقصد نہیں بنایا. سبحانك فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی فضول کام کرے، تو پس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے وہ غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے. رات کے آخری پہر میں جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ ان آیات کی تلاوت کرتے تھے. یہ سورت آل عمران کی آخری آیتیں ہیں، آیت 190-191 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. تو اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ کیا بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مومن کی یہ صفات ہے، عقل مندوں کی یہ صفات ہیں کہ وہ آسمان اور زمین کے نظام پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. صحابہ کرام جو ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بھی سوچتے رہتے تھے. سب سے زیادہ جنہوں نے ان آیات پر عمل کیا اور خوب حسن کے ساتھ کیا اور اچھے سے کیا، تو استاد ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور شاگرد تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک خاص شان ہے کہ انہوں نے عظمت اور ہیبت کی وجہ سے اپنے رسول سے بہت کم سوال کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے اور بڑی آپ صحابہ پر آپ کی ہیبت رہتی تھی، اس وجہ سے بہت کم سوال کیے ہیں، بخلاف پچھلی امتوں کے جنہوں نے بکثرت سوالات کیے اور اس ادب کو ملحوظ نہیں رکھا. گائے کے واقعے بھی دیکھ لیں کہ کتنے انہوں نے سوال پوچھے ہیں نا، تو نبی کا پیغمبر کا ادب ہی نہیں کیا، استاد کا احترام ہی نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سوالات جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کل 14 ہیں. ایک تو وہ تھا، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، ہے نا، جب تیرے بندے جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھے تو کہو کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی بات کو سنتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں پکار کو قبول بھی کرتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں، ہے نا. تو ایک تو وہ سوال تھا. دوسرا سوال جو ہے یہ ہے، یہ ابھی جو ہے کہ یہ تجھ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ، اور ان کے پاس سورت بقرہ ہی میں 6 سوال اور آئے ہیں اور باقی 6 سوال مختلف صورتوں میں آئے ہیں. ویسے تو انہوں نے عمومی زندگی میں ہو سکتا ہے اور بھی بہت سے چھوٹے موٹے سوالات کیے ہوں، لیکن خاص جیسے وہ سوالات جن کا قرآن میں ذکر آ گیا اور وحی نازل ہو گئی. تو یہاں پر بھی صحابہ نے رسول اللہ سے اہلہ، یعنی چاند جب شروع مہینے کا ہے तो उसके मुतालिक सवाल किया कि इसकी सूरत सूरज से मुख्तलिफ क्यों है कि वो कभी बारीक हो जाता है हिलाली शक्ल बिल्कुल इब्तदाई, और कभी फिर ऐसा ऐसा बढ़ता है तो पूरा दायरा बन जाता है, पूरा गोल हो जाता है, फिर इसमें कमी आने लगती है, तो इसकी हिकमत क्या है? तो वो ये समझना चाहते थे, मसलहत को समझना चाहते थे कि चांद के घटने में और बढ़ने में कोई क्या हिकमत है, कोई मसलहत है। तो अब ये नहीं था कि वो उस वक्त जो है वो उनके जहन में कोई इस तरह की बात थी साहबा के जहन में कि ये शमसी निजाम जो है या फिर साइंस की तहकीक वगैरह, बल्कि वो तो उनकी जो भी बात होती थी उसका ताल्लुक जो था वो किस पर आकर रुकता था कि हदायत, ये अल्लाह की मखलूक है, चांद है, सूरज है, आसमान है, तो ये घटता क्यों है, ये बढ़ता क्यों? उनको ये बात पता थी कि ये जो है वो ये अल्लाह का कहना मानता है, सूरज और चांद सब अल्लाह की अताआत करते हैं, है ना, अल्लाह अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं। तो यहाँ पर उनके पूछने का मकसद क्या था कि ये, क्योंकि वैसे भी आप देखें सूरज चांद आसमान पर है ना नजर आता है, प्रोमिनेंट होता है, और आप देखें कि सूरज जो है वो एक ही अंदाज में चलता है, लेकिन चांद जो है कभी छोटा कभी बड़ा, कभी अंधेरा हो गया कभी रोशनी हो गई, तो ये चीज लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करती थी। और उस जमाने में हालात क्या थे कि लोगों के पास चूंकि इल्म नहीं था तो मुख्तलिफ वहम थे उनके अंदर, मुख्तलिफ रस्में और रवाज थे, और मुख्तलिफ रसूमात उनके अंदर पाई जाती थी। तो अहले अरब में आज भी पाए जाते हैं कि वो चांद से अच्छा या बुरा शगुन लेते हैं, जब वो रोशन होता है तो अच्छा शगुन लेते हैं, जब उसमें अंधेरा आता है तो उसे बुरा शगुन लेते हैं। फिर वो चांद की बास तारीखों को कहते थे ये मनहूस है, बास को कहते थे ये सादत वाली है, ये अच्छी तारीखें हैं। इसी तरह किसी तारीख को वो सफर के लिए अच्छा समझते थे और किसी को कहते थे कि ये सही नहीं है। चांद की किसी तारीख को शादी के लिए मौजू समझते थे, किसी को मनहूस समझते थे। तो वो समझते थे कि चांद का तुलू और गुरूब होना, चांद की कमी बेशी, इसका घटना और बढ़ना इंसान की किस्मत पर असरअंदाज होता है। मतलब उस जमाने के जो लोग थे अरब लोग वो ये समझते थे। तो चूंकि उस जमाने में ये सारी बातें पाई जाती थी तो अब सहाबा के भी जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि इसकी हकीकत क्या है। तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह ताला ने खुद इसका जवाब दे दिया, कुल हिया मवाकीतुल लिन्नासी वल हज, कि ये लोगों के लिए एक कैलेंडर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इन चीजों की हकीकत पूछी गई तो जवाब में अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि ये घटता भरता चांद तुम्हारे लिए इसके सिवा कुछ नहीं कि एक कुदरती कैलेंडर है, जंतरी है, जो आसमान पर नमूदार होकर दुनिया भर के लोगों को बयक वक्त इनकी तारीखों का हिसाब बताती रहती है। अच्छा, यहाँ पे फिर हज का जिक्र क्यों किया खास तौर पे? वरना तो रोजों का ताल्लुक भी तो चांद से ही है ना, ईद का ताल्लुक भी चांद से है ना। तो हज का जिक्र खास तौर पर इसलिए किया कि अरब की मजहबी तमदनी मुआशी जिंदगी की इसमें बड़ी अहमियत थी। साल के अंदर सिर्फ 4 महीने उनको ऐसे मिलते थे जिसमें लड़ाइयां बंद हो जाती थी, रास्ते महफूज हो जाते थे, और खूब अमन मिलता था जिसके वजह से उनका कारोबार जो था वो तरक्की पाता था, यानी जिलकद, जुलहज, मुहर्रम और रजब। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये हज की अलामतें हैं। फिर फरमाया वलैसल बिरु बिअन्तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, और इनसे कहो नेकी ये नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल हो, वलकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा, बल्कि नेकी तो असल में ये है कि आदमी मुत्तकी हो जाए, आदमी अल्लाह की नाराजगी से डरे, अल्लाह की नाराजगी से बचे। हजरत बरा रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि ये आयत हम अंसारी लोगों के हक में नाजिल हुई, वो जब हज करके वापस आते तो दरवाजों से ना आते बल्कि पिछवाड़े से पीछे से आते। एक दफा एक अंसारी दरवाजे से अंदर आया तो सब उसे लोग लानत मलानत लान लान तान करने लगे, लानत मलामत करने लगे, तब ये आयत उतरी। ये बुखारी की रवायत है। तो इससे क्या असूल निकला कि किसी भी बात को नेकी समझकर दीन में दाखिल कर लेना, तो ये दीन की एक खास उसको दीन का तरीका बना देना, शियार बना देना, ये ममनू है, ये यही बिदत है यही चीज जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो उन्होंने खुद ही अपना ये तरीका बना लिया हुआ था कि जब वो आते थे हज से वापस तो पीछे से आते थे, सीधे रास्ते से घर का जो दरवाजा था उससे दाखिल नहीं होते थे। तो अब वहां पे उनको क्या कहा जा रहा है कि वातुल बयूत मिन अबवाबिहा, कि तुम आओ अपने घरों में उनके दरवाजों से, यानी जब भी घरों में दाखिल हो तो दरवाजों से दाखिल हो, पीछों से दाखिल होने की जरूरत नहीं है। तो क्या असूल निकला कि गैर जरूरी चीजों को अपने पर फर्ज और वाजिब नहीं कर लेना चाहिए, बाद जायज चीजों को हराम और नाजायज करार दे देते हैं लोग ना, ये भी ठीक चीज नहीं है, है ना। तो असल बात यह है कि जिस चीज की शरण अगर कोई हकीकत नहीं है तो इसको अपने ऊपर लाजिम नहीं कर लेना चाहिए। जैसे आप शादी को ही देख लें, शादी के मौके पर क्या करते हैं, कितनी रस्में हैं जो आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर रवाज पा चुकी हैं। अब मेहंदी की रस्म ही देख लें, मेहंदी की इसमें कोई हर्ज नहीं कि दुल्हन को मेहंदी लगाई जाए, दुल्हन की सहेलियां सब घर वाले औरतें लड़कियां मिलकर मेहंदी लगा लें, थोड़े बहुत जो भी गीत आते हैं समझ में अच्छे वो गा लें, और मतलब लेकिन ये कि जिस तरह वो मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, जिस तरह लड़के और लड़कियां इकट्ठे होते हैं, जिस तरह जो है वो इख्तलात मर्द जन होता है, बेहयाई होती है, और फिर ये कि उड़िया फोश गाने गाए जाते हैं, और फिर बाज घर वाले ये सब रस्मों को निभा भी नहीं पाते, इतना खर्च नहीं कर सकते, तो बहुत सी दावतें हो जाती हैं। ये मेहंदी की है, फिर एक और होती है जिसमें कोई पीला जोड़ा पहना जाता है, उपटन मायों उसको जो भी आपने नाम आप कह रही हैं, कि अब इसकी भी हकीकत क्या है कि इसका ये नाम रखा गया। ये सारी हिंदुआना रस्में हैं, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और हमें इन रस्मों को ना तोड़ना चाहिए। वैसे दुल्हन की तैयारी है, उसका मेकअप है, उसकी सजावट बनावट है, इसमें कोई हर्ज नहीं, जो मसनून तरीके हैं वो सारे अपनाए जा सकते हैं, लेकिन इन रस्मों को अपने घरों से निकालना चाहिए, इनको खुदा हाफिज कहना चाहिए, यानी इससे निकाह मुश्किल हो जाता है। इतने दिन और फिर इतनी रातें और फिर कितनी नमाजों की कुर्बानी, कितने पैसों का ज़िया, फिर कैसी मिसालें, है ना। हालांकि निकाह रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और जितना ये आसानी से हो उतना ही अच्छा है, और निकाह मस्जिद में करना, मस्जिद को आबाद करना, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो इस तरह जो हमें क्या बात पता चली कि असल नेकी ये है कि अल्लाह का डर इख्तियार किया जाए। तो हम क्या करते हैं, सारी रस्मों को निभाते हैं, है ना। तो रस्में निभाते निभाते कमर टूट जाती है, कर्जों के बोझ तले लोग दब जाते हैं, दूसरी बेटी की शादी करने की बजाय उसके बाल ही जो है ना, उसके बालों में चांदनी जो है वो चमकने लगती है, और फिर सोच नहीं पाते कि कैसे शादी करें ना, है ना। तो असल बात क्या है कि मुत्तकी बनना, और दरवाजों से सही दरवाजों से घरों में दाखिल हो, ये तो ऐसी बहुत सी रस्में हैं। इसी तरह अभी वो आजकल कोई है ऐसा, ऐसी लोग वो न्याज देते हैं कि ये मर्द नहीं खा सकते, और कुंडे जैसे, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है, घर से बाहर नहीं ले जा सकते, घर से बाहर भी नहीं जा सकती वो, हाँ। और भी इस तरह की बहुत सी बातें, एक दफा किसी ने बताया कि बाहर भी नहीं जा सकती, इसको मर्द भी नहीं खा सकते, और भी पता नहीं क्या बहुत सी ऐसी रस्में सी जो है वो बन चुकी हैं। तो जिनकी कोई हकीकत नहीं है उनको अपनी जिंदगी से निकालना चाहिए, सोचना चाहिए, और जो भी हमारे घरों में हमारी सोसाइटी में हो रही है तो उसके लिए असल बात क्या है कि रोशनी इतनी फैलाएं कि अंधेरे छट जाएं। वो फिर वही बात कि एक आप अपनी जब दावा करें तो आप शुरू करें कि ये जो क्या है कुंडे अच्छे बात नहीं है, तो आप कुंडों से नहीं शुरू करेंगे बात को, आप बात करेंगे तौहीद क्या है, है ना, एक अल्लाह की इबादत किसे कहते हैं। तो खुद ब खुद लोग जब समझदार होते चले जाएंगे तो जो भी जाहिलाना रस्में हैं उनके अंदर से निकलती चली जाएंगी हिकमत के साथ। बाज़ूकात एक दफा कहीं हम दर्स था, मैं दर्स देने गई तो वो जो भी कुछ लोग थे वो इसी पे इसरार कर रहे थे कि ये इसने ना नाखून रखे हुए लंबे, इसको कहीं नाखून ना रखा करें, और इसने जो है ना ये इस तरह से ये किया हुआ है, ये सही नहीं है। और इस बात पर टॉपिक, तो टॉपिक हमें इसको नहीं बनाना चाहिए, टॉपिक दीन की बुनियादों को बनाना चाहिए। जब अकायद की बात हो, जब इबादत की बात हो, तो ये चीजें खुद ब खुद इंसानी जिंदगी में ठीक हो जाती हैं। और इससे क्या है कि पब्लिक आवाम होती है, सादा होती है, उसको इतनी समझ भी नहीं होती, तो वो कहते हैं अगर आज एक दर्स में गए तो ये चार चीजें तो उन्होंने पहले सबसे मना की हैं, तो अगले में जाएंगे तो जिंदगी तो और ही मुसीबत बन जाएगी। जब उनको ये समझ आ जाती है कि मेरी जिंदगी का मकसद तो अल्लाह की बंदगी है, गुलामी है, मुझे सर्वेंट बनना है, अल्लाह मेरा हाकिम है, उसके अहकामात पर अमल करना है, तो उसके लिए कुछ भी छोड़ना और कुछ भी अपनाना मुश्किल नहीं रहता। हजरत खंसा रजी अल्लाह अन्हु की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि बहुत मशहूर शायरा है इस्लाम की ना, वसीय उनके बड़े मशहूर हैं। उनके दो भाई थे और उनके दोनों भाई थे और वो मारे गए जैसे जंग में। एक उनका भाई सखर था, उसके जब वो उनके भाई मारे गए तो बड़े उन्होंने शेर के और अपने सर के ऊपर ना उन्होंने बालों का एक गुच्छा बनाकर ना ऐसे सर पर वो बांध कर रखती थी, जमाना जाहिलियत पे। जब वो मुसलमान हुई तो फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये मैंने उसके सोग में बांधा हुआ है, मतलब सोग मनाने का ये भी तरीका था कि बालों को ऐसा गुच्छा बना के। तो उन्होंने जो है हजरत, फिर उनको पता चला कि ये जो है ना जायज नहीं है। कितनी देर से, कितनी अच्छे से, महीनों से बांधा हुआ था, जब पता चला तो फौरन उन्होंने उसको ना हटा दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि गैर जरूरी चीजों को जो है हम अपनी जिंदगी से जो है वो निकाल दें। और इसी तरह जो है आज आप देख लें कि वातुल बयूता मिन अबवाबिहा, के दरवाजों से सीधी तरह आओ और क्या करो, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। तो जब अल्लाह का डर होता है ना तो फिर हम सारे मसनून काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। लअल्लकुम तुफ्लहून, शायद के तुम्हारी फलाह हो जाए, हो सकता है कि तुम फलाह पा जाओ। ये हो सकता क्यों कहा, आपकी नीयत पर मुनहसिर है। आपकी नीयत क्या है, एक इमाम के पीछे बहुत सी सफे होती हैं और बहुत से नमाजी नमाज पढ़ते हैं। इमाम की किरात एक है, इमाम के रुकू और सुजूद एक है ना। और लेकिन जो पीछे मुक्तदी हैं वो एक ही तरह से रुकू और सुजूद कर रहे हैं, लेकिन नीयत में फर्क की वजह से सबके दर्जों में और अजर में फर्क हो जाता है। एक्शन सेम है, एक ही बंदे को सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन नीयत का फर्क उनके दर्जों में, उनके अमाल में फर्क कर देता है। तो असल बात क्या है कि हुस्ने नीयत, अल्लाह को राजी करना, और मकसद क्या है, क्या है, फला हो जाए। فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا, और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करो। तो अब यहां पर एक खास वाकये की तरफ जो है वो इशारा है, और वो क्या है कि मुसलमान जो थे उनको काफिर जो थे वो तंग करते थे, है ना। और आपको ये बात ही पता है कि मक्की दौर मुसलमानों का कैसा दौर था, मुसलमान कमजोर थे, मुसलमान थोड़े थे, मुसलमान मुंतशिर थे। वहां जब भी जालिम जुल्म करते थे और जुल्म और सितम की इंतहा हो जाती थी और मुसलमान सोचते थे कि हम भी लड़े, तो उनको कहा जाता था सब्र करो, वस्तईन बिसब्री वसलाह, नमाज और सब्र से काम लो। अब जब मदीना में मुसलमान आ गए, मुसलमानों को एक छोटी सी रियासत मयसर आ गई, अब उनको ये हुक्म दिया जा रहा है और उनको इजाजत दी जा रही है कि जब तुम दावत का काम करने निकलो, जब तुम इस्लाह करो दुनिया की, और अगर कुछ लोग आकर तुम्हें रोकें, तलवार तुम पर उठाएं, तो तुम तलवार का जवाब जो है तलवार से दो। इसके बाद ही फिर गजवाए बदर होती है और फिर लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे बात क्या है, गौर करें, और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, यानी तुमने लड़ाई नहीं शुरू करनी, वो पहल कर रहे हैं, तो फिर तुम भी जो है वो क्या करोगे, फिर उसका जवाब दोगे, अपनी मदाफियत करोगे, अपना जो है वो बचाव करोगे। और आप देख लें कि जितने भी गजवात हुए हैं उसमें कहीं मुसलमान भी गए हैं, काफी ही बदर हुई तो काफिर मदीना आए हैं, ओहद हुई तो काफिर मदीना आए, है ना। इसी तरह अहजाब हुई तो काफिर मदीना आए, फतह मक्का में तो जंग हुई नहीं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो फतह ही हो गई, तो जंग भी नहीं की, है ना। तो वो क्या था, वो अमन का ऐलान था। और अगर जो है मुसलमानों को जो अगर जंग करने की जो भी जो उसका जो तरीकेकार है उसमें क्या है कि तीन उसकी शरायत हैं कि जब भी मुसलमानों को जंग करने की अगर इजाजत है तो वहां भी ये हुक्म नहीं दिया कि जाओ और जाते ही जंग करनी शुरू कर दो, रातों रात जो है कुछ करना शुरू कर दो, बल्कि क्या है, सबसे पहले उनको ये कहा जाता है कि तुम जाके ये दावत दो, इस्लाम को फैलाओ, उन लोगों को दावा दो कि लोग मुसलमान बन जाएं, और फिर क्या है कि वो मतलब इन्नमल मोमिनून इख्वा के वो मुसलमानों के भाई बन जाएंगे। फिर तुमने उस इलाके पर कब्जा नहीं करना, वो मुसलमान बन गए, कब्जा भी उनका, हुकूमत भी उनकी, बस उनको कुछ नहीं कहना। अल्लाह की खुदाई को कायम करना है, शर्त ये है ना। दूसरी इसकी शर्त क्या है कि इस्लाम दुश्मनी उनसे कहा जाए कि छोड़ दें, जब आप गए इस्लाम की दावत दी वो इस्लाम तो कबूल नहीं कर रहे, लेकिन अब उनसे ये कहना है कि अच्छा तुमने इस्लाम अगर कबूल नहीं किया तो इस्लाम से दुश्मनी भी नहीं करनी, अपनी मजहबी आजादी बहाल रखो और अताअत गुजारी इख्तियार करो। अताअत गुजारी क्या है कि तुम इस्लामी हुकूमत को मानोगे कि उसके लिए फिर फिदिया देते रहोगे, ठीक है। तुम्हें अपनी बाउंड्री के अंदर, अपने इलाके के अंदर मजहबी आजादी पूरी पूरी जो है वो हासिल है, ठीक है। यानी अताअत नहीं की तो अब दुश्मनी भी नहीं करनी, और दुश्मनी ना करने की का सिंबल क्या है कि फिदिया देते रहोगे, समझ आ गई। तीसरी शर्त क्या है और आखिरी शर्त कि अगर जो है कोई ना तो इस्लाम कबूल करे ना ही मतहत रहना चाहे, फिदिया देना कबूल करे, तो अब आखिरी शक्ल क्या है कि फिर जंग है। और जंग जब करनी है तो किस लिए करनी है, लड़ाई करनी है तो किस लिए करनी है, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। इसको खास तौर पर आप हाईलाइट करें, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मुसलमान जब जंग करता है तो उसका मकसद ये नहीं है कि मुल्कों के मुल्क फतह करता जाए और अपने नाम के झंडे उस पर लगाता चला जाए, है ना। उसका ये मकसद भी नहीं है कि वो यानी सिकंदर आजम बन जाए, उसका ये मकसद भी नहीं है कि वो पैसे जमा करता जाए, माले गनीमत जमा करना, हाँ, बल्कि उसका महबूब तरीन मशगला क्या है, जंग करने का, कि लोग इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम को अपनी खुशी से कबूल करें। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम फिर इस्लाम दुश्मनी ना करें। अगर ये दोनों बातें नहीं मानते, आखिरी चारा कार क्या है कि फिर वो जंग की इजाजत दी गई है, फिर जंग में भी जो इजाजत दी गई तो क्या तरीकेकार है कि उस वक्त जो है क्या किया जाएगा कि छोटे बच्चे जो हैं उनको कत्ल नहीं किया जाएगा, औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, पौधों को, फसलों को, खेतों को तबाह नहीं किया जाएगा, बूढ़ों को जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, परिंदे हैं, जानवर हैं, इस तरह की जो चीजें हैं उनको नहीं किया जाएगा, सही। तो ये है बात कि अल्लाह के रास्ते में जंग करो, यानी अल्लाह के दीन को सर बुलंद करने के लिए, ये नहीं कि लोग तुम्हारा नाम लेने लगे, तुम्हारे नाम के झंडे जो हैं वो लगने शुरू हो जाएं। तो असल चीज अल्लाह के दीन की सरबुलंदी है। अल्लाज़ीना युकातिलूनकुम, उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि जो आके लड़ाई कर रहा है तो हाथ बांध कर खड़े हो जाए कि हाँ मुझे मार दो, बल्कि क्या कि फिर अपनी मदाफियत करनी है। वला तातदू, और ज्यादती न करना। तातदू जो है इसमें क्या चीजें शामिल है कि ज्यादती ना करना, यानी जैसे अगर वो कुछ नहीं कह रहे तो आप भी कुछ ना कहें, और इसी तरह इसमें ये चीज भी आती है कि जैसे बच्चे हैं, या ये कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ने जब हजरत यजीद बिन अबी सुफियान को शाम की तरफ भेजा तो उनको ये हदायत की कि इबादत गुजार और राहबों को और काफिरों की मजदूरी करने वालों को भी कत्ल ना करना, जबकि वो किताल में हिस्सा ना ले। और इसी तरह अबू दाऊद की रवायत है हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु से कि जिहाद पर जाने वाले सहाबा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदायत है कि तुम अल्लाह के नाम पर और रसूल अल्लाह की मिल्लत पर जिहाद के लिए जाओ, उनके दीन पर। किसी बूढ़े जईफ को और छोटे बच्चे को या किसी औरत को कत्ल ना करो। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की रवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहा के माने क्या है, मना किया, अन कत्ल निसाई वस्सिबियान, औरतों के और बच्चों के कत्ल से रसूल अल्लाह ने मना किया। तो ये है कि ये ज्यादती न करना, ना इबादत गाहें ना कुछ और। तो आप सोच लें कि इस्लाम कितना अमन पसंद दीन है, और इस्लाम जो है वो कितना हसी दीन है, कितना खूबसूरत दीन है, कैसे दूसरों का एहतराम करता है, उनके गिरजों का भी, उनकी इबादतगाहों का भी, उनके बूढ़ों का भी, उनके कमजोरों का भी, उनकी फसलों का भी, उनके परिंदों का भी। लेकिन अगर जवान हैं और वो लड़ना ही चाहते हैं और लड़ने आ रहे हैं, तो फिर क्या कहा कि तुम फिर उनसे लड़ो, उनसे मुकाबला करो। तो अब आप देख लें कि जो है बगैर किसी वजह से अगर मुसलमानों पर ये इल्जाम लगा दिया जाए कि वो जो है वो टेररिस्ट हैं, या वो जो है ये जंग करने वाले हैं, या अगर कहीं किसी जहाज में नमाज भी कोई पढ़ रहा है तो ये इनकी हरकत ऐसी लग रही है कि डर लग रहा है, और फिर जो है वो एक मुश्किल जो है वो खड़ी हो जाए, है ना। तो ये चीज जो है ये है ज्यादती, ना कि ये ज्यादती है ना। फिर फरमाया इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता ज्यादती करने वालों को, जो ज्यादती करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता। तो ये भी ज्यादती है कि इंसान दौलत के लिए करे, और ये भी ज्यादती है कि अगर जैसे जितनी जरूरत थी जंग करने की अब वो खत्म भी होगी, लोग कुछ नहीं कह रहे, फिर और ज्यादा चढ़ाई करता जाए, तो ये भी ज्यादती की तारीफ में आता है। जितने भी वाशियाना अमाल है ना, जो जालिमाना अफाल है, हद से गुजरने की तारीफ में आते हैं। कि दुश्मन के मकतूलों का मुसला करना, या फिर ये है कि बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को भी कत्ल कर देना, ये सारी चीजें। फिर फरमाया वक्त लूहू है सो सकित तुम, कि तुम उनसे लड़ो जहां भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए, यानी जब भी तुम उनको पाओ, और अगर क्या करो फिर उनसे लड़ो। वह अखरे जो हूं मिन है सो अखरा जो कुम, और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुमको निकाला है। तो कहां से उन्होंने निकाला था? मक्का से निकाला था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का में रहते थे, आपके सहाबा भी मक्का में रहते थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का जीना जो था वो दूभर कर दिया, और मुसलमानों को मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया। तो अब जो है, अब यहाँ पर ये इजाजत दी जा रही है कि अगर काफिर किताल करें, जंग करें, तो तुम्हें भी इजाजत है कि तुम उनसे जंग करो, और अगर हिम्मत हो, कुदरत हो, तो जब भी मुमकिन हो तो उनको, जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को मक्का से निकाला था, तुम भी उनको मक्का से निकाल सकते हो। तो आप देख ले, पूरी मक्की जिंदगी में मुसलमानों को काफरों के साथ लड़ने से, लड़ाई से रोका हुआ था, हमेशा अफ़ो दरगुज़र की तलकीन होती रही। और अब ये कि इस आयत के नाजिल होने से ये बात पता चल गई कि अब किसी कातिल को, काफिर को कत्ल करना, अगर कोई कातिल, वैसे भी कोई काफिर है, अगर उसको कत्ल किया जा रहा है, वो ज्यादती कर रहा है, तो ज्यादती का बदला दिया जा रहा है, तो फिर ये चीज ममनू नहीं है। फरमाया वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, यानी अगरचे कत्ल बुरा है मगर फितना इससे भी ज्यादा बुरा है। फितना क्या है? कि वो आजमाइश की भट्टी, वो आजमाइश की आग जिसमें मुसलमान झोंके गए, वो मक्की दौर। यानी काफरों ने क्या किया था कि उन्होंने मुसलमानों को जो था वो तंग किया था, मुसलमानों को वो इबादत नहीं करने देते थे, वो क्या करते थे, वो जुल्म और सितम करते थे, वो इतना तंग करते थे कि मुसलमानों को ईमान लाने से रोकते थे, है ना। और अल्लाह ताला कहते हैं कि सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बादि मा फुतिनू, ये सूरत नहल है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तेरा रब इन लोगों के लिए जिन्होंने हिजरत की बाद इसके कि वो तरह तरह की हिजाओं में मुब्तला गए, यानी जब उनको फितने में डाला गया तो उन लोगों ने हिजरत की। तो ये सूरत नहल की आयत नंबर 110 है, 110। तो अब यहां पर भी इसी बात का जो है वो जवाब दिया जा रहा है कि अगर काफिर मुसलमानों को जुल्म व सितम का निशाना बनाएं और तंग करें, तो फिर उस वक्त जो है फिर उसका जवाब दिया जा सकता है। तो काफिर क्या करते थे? बातें करने लगते थे कि ये कैसे ईमान लाने वाले लोग हैं, कि इनका ईमान जो है वो इनको फिर जो है वो जंग से रोकता नहीं है। खुद ज्यादती करते थे तो आगे से ये बातें करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि गो के जो है वो किसी को कत्ल करना भी बुरा है, पर फितना इससे भी ज्यादा बुरा है। तो मुख्तलिफ जो आजमाइश है, मुसीबत है, ये जो है वो इससे भी ज्यादा बुरी चीज है जिस पर तुम इनको जो है वो मजबूर कर देते हो। जैसे काफिर मुसलमानों को ये भी करते थे कि मुसलमान दीन से ही फिर जाए, इतना मारते थे, इतना पीटते थे। तो अब इन सारे चीजों के लिए, इनके सद्देबाप के लिए जरूरी हो गया कि मुसलमानों को जिहाद की इजाजत मिले। فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ وہاں پہ لڑنے سے نہ رکے تو پھر تم بھی بے تکلف ان کو مارو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا، یعنی کفر کرنے کی یہی سزا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے، تو اجازت دی گئی تو کیوں دی گئی؟ اور مخالفین اسلام اسی پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس میں جہاد کی اجازت دے کر مستقل ایک جنگی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اسلام جو ہے ایک امن پسند دین ہے. اور جب اسلام آیا تو اس سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے؟ وہاں پہ عرب قبائل ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، ان کے اندر باہمی خانہ جنگیاں تھیں، ہے نا. اور اسلام آیا تو پوری دنیا جو ہے اس کو دار السلام بنا دیا، دار الامن بنا دیا. اور پھر کیا تھا کہ جو دار السلام تھا وہاں تو تھا ہی سکون، اور جو دار الکفر تھا اس کو بھی کہا کہ تم فدیہ دے کر سکون سے رہو. تم نہیں اگر اللہ کو مانتے تو کوئی بات نہیں، اپنے مذہب کی تمہیں پوری پوری جو ہے وہ آزادی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ آج کے دور میں کیسی جنگ کی ہر طرف کیفیت ہے، کیسے ایک ڈر ہے، کیسے ایک خوف ہے نا. تو اب یہاں پر بھی یہ جو مسجد حرام کا ذکر آیا ہے اس کی بھی جو ہے وہ خاص پس منظر ہے، اور وہ کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے وقت کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی 191. کیوں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ عمرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہے نا. تو 1400 صحابہ کے ساتھ آپ عمرے کے لیے جب نکلے تو ایک ایک تلوار بھی رکھی ہوئی تھی نیام میں نا. اب اس وقت یہ تھا کہ عمرہ اور حج پر جائیں تو جنگ تو نہیں ہوتی، لیکن مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اگر ہم وہاں پہ گئے، اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے، ہے نا. یعنی اگر کافروں کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اگر انہوں نے جنگ کرنی شروع کر دی تو کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر وہ جنگ کریں تو تمہیں بھی اجازت ہے، جہاں پاؤ ان کو قتل کرو. اگر قدرت ہو تم میں، اگر یہ ایسے حالات ہوں تو جس طرح انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا تم بھی ان کو نکال سکتے ہو، ان سے وہ لڑے تو تم بھی لڑنا. کذالک جزاء الکافرین، یہ ہے بدلہ کفر کرنے والوں کا. سمجھ آ گئی ساری آیتوں کی؟ آگے چلے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ اگر وہ کافر جو ہیں، اگر وہ مجرم جو ہیں، جو ان کی بری عادت ہے، جو وہ باغیانہ روش ہے، اگر اس سے وہ باز آ جائیں تو تم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لو، ہے نا. اب یہ نہ ہو کہ لڑائی جو ہے انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے تم کرو لڑائی، بلکہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کرو. اسی وقت تک لڑائی کرنی ہے جب تک کہ دوسرا کر رہا ہے، جب وہ چھوڑ دے تم بھی فوراً چھوڑ دو، پھر اس پر جو ہے دوبارہ جو ہے تم نہ اٹھو، پھر تم اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ وار نہ کرو. تو ان باتوں سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہی لڑائی کی رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ لڑائی کو ختم کر دینا چاہیے. اگر جیسے لڑائی ہوئی اور کسی پر غلبہ پا لیا تو اب کیا کرنا ہے، سزا کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو وہ لوگ جو مسلمانوں پر سزا دینے میں، ظلم کرنے میں حد سے بڑے ہوئے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے، ان کو پھر سزا دی جاتی ہے، دی جا سکتی ہے. جیسے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور ندر بن حارث کو آپ نے قتل کروایا اور باقی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا. اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام اعلان کر دیا کہ جو ہے وہ سب کے لیے معافی کا اعلان ہے، جو فلاں جگہ جو ہے وہ جا کر پناہ لے لیں، فلاں جگہ چلا جائے تو بھی اعلان ہے، جو اسلام قبول کر لے تو بھی ہے، ہے نا. اس طرح کے مختلف اعلان تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے 4 آدمیوں کو پھر قتل کرنے کا حکم دیا. یہ وہ اشتہاری مجرم تھے جنہوں نے نہ تو معافی مانگی نہ ہی اسلام قبول کیا، اور اس سے پہلے بھی وہ مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرنے والے تھے. ان میں ایک تو عبداللہ بن خطل تھا، یہ 3 ایسے جرائم میں ملوث تھا جن کی سزا اسلام میں قتل ہے. اور وہ 3 جرائم کیا تھے؟ تو وہ اسلام سے پھر گیا تھا، اسلام قبول کیا پھر چھوڑ دیا، پھر اس نے خون نحق کیا تھا، तीसरा वो आपकी हिजब करता था, बुरा भला कहता था, यानी तोहीन रिसालत का मुजरिम था। चुनाचे अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि फतेह मक्का के दिन आप सर पर खुद पहने हुए मक्का में दाखिल हुए, ये लोहे का लिबास है ना वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उतारा तो एक शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, अब्दुल्ला जो है ये काबे का पर्दा पकड़े हुए लटक रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कत्ल कर दो। तो ये बुखारी की रवायत है। हालांकि उसने खाना काबा का पर्दा पकड़ा हुआ था, फिर भी कहा कि इसको कत्ल कर दो। क्यों? इसलिए कि उसके जो जुन थे, जो उसके जराइम की फेरिस्त थी, उस वजह से। अब्दुल्ला बिन खतल, खा तो ए लाम। फिर फरमाया, यानी फाइन ताहू फाइन अल्लाह गफूर रहीम, बस अगर वो रुक जाए तो अल्लाह भी बख्शने वाला और रहम करने वाला है। वह कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, तुम इनसे लड़ते रहो यहां तक कि फितना बाकी ना रहे। तुम उनसे लड़ते रहो यहां तक कि फितना जो है वो बाकी ना रहे। तो अब जो है ये हमें यहाँ पर क्या हुक्म दिया जा रहा है, मुसलमानों के लिए क्या जो है वो यहाँ पे खास हुक्म है कि उस वक्त तक लड़ना है, उस वक्त तक जंग की इजाजत है जब तक के फितना बाकी है। जब फितना खत्म हो जाए तो फिर फौरन जो है उसको छोड़ देना है। तो फितना खत्म होने का पता कैसे चलेगा? वह यकून दीन लिल्लाह, के दीन जो है वो अल्लाह के लिए हो जाए। इससे मुराद क्या है कि अवाम भी अल्लाह की जो है वो अतात इख्तियार कर लें और हुकूमत भी जो है वो अल्लाह की अतात में आ जाए। तो उस वक्त तक जो है जंग जो है वो की जा सकती है। वयकून दीन लिल्लाह, और दीन कुल का कुल जो है वो अल्लाह के लिए हो जाए। तो इसके अंदर जो है ये खास बात भी आती है कि अल्लाह की सुन्नत क्या है। अल्लाह की सुन्नत ये है कि जब वो किसी कौम में अपना रसूल भेजता है तो वो रसूल इस कौम के लिए खुदा की आखिरी और मुकम्मल हुज्जत होता है। अब जो है इसके बाद मजीद किसी दलील की उस कौम को कोई जरूरत नहीं रहती। अगर वो कौम ईमान ले आए तो बहुत अच्छा, अगर वो कौम ईमान न लाए, तकजीब करे, झुटलाए, रसूल को झुटलाए, उससे दुश्मनी रखे और उससे लड़ाई करे, तो वो फना कर दी जाती है, अल्लाह के अजाब के जरिए से ही फना कर दी जाती है ना। तो अब जो है इसी सुन्नत की तरफ यहां पर जो है वो इशारा किया जा रहा है कि तुम उस वक्त तक लड़ते रहना यहां तक कि फितना खत्म हो जाए और दीन अल्लाह के लिए हो जाए, है ना। कुल या तो लोग दीन को कबूल कर लेंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे, या फिर तलवार फैसला करेगी, है ना, वरना फिर ये कि अल्लाह ही उनका फैसला कर देगा। तो अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि आपने लोगों को इस्लाम की दावत दी, जिन्होंने दावत को कबूल ना किया तो फिर तलवार, यानी ये कि जंग करनी पड़ी उनसे, वो जंग करते थे तो जंग करनी पड़ी। फिर तीसरा क्या था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर फौज कशी की और फिर बैतुल्ला पर कब्जा करके बैतुल्ला को कुफ्र और शिर्क की अलाइशों से पाक कर दिया। जितने बुत थे उनको तोड़ दिया गया, और साथ साथ क्या तिलावत किया जा रहा था, वजा अल हक व जहकल बातिल, इन्नल बातिला काना जहूका, हक आ गया और बातिल चला गया। तो वो यही है, यकून दीनु लिल्लाह, के दीन जो है वो अल्लाह ताला के लिए है, जो है वो हो जाए। फिर फरमाया, फाइन तहो फला उदवाना इल्ला अल जालिमीन, फिर अगर वो बाज आ जाए तो समझ लो कि जालिमों के सिवा किसी और पर दस्त दराजी जो है वो नहीं है। तो बाज आ जाए से मुराद यहाँ पे अब कुफर और शिर्क से बाज आना नहीं है, बल्कि क्या है, फितने से बाज आना है। यानी काफिर को और मुशरिक को इख्तियार है, वो चाहे तो कुफर कर रहा है, वो चाहे तो शिर्क कर रहा है, यानी अपने अकीदे के मुताबिक इबादत कर सकता है ना। अब गुमराही से निकालने के लिए हम उसको समझाएंगे, जंग नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अब उसे हरगिज ये हक नहीं है कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कानून की बजाय अपने बातिल कवानीन जो है वो नाफिज करे, लोगों को अपने अल्लाह की बजाय अपना बंदा बनाए। तो इस फितने को खत्म करने के लिए जरूरत पड़े तो तबलीग से और फिर जो है शमशीर से, दोनों से काम लिया जा सकता है। मोमिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के कुफार अपने फितने से बाज ना आ जाएं। अब ये है कि अगर वो दीन को कबूल कर लेते हैं या ये कि इस्लामी हुकूमत को कबूल कर लेते हैं फिदिया देकर, समझ आ रही है दोनों बातों की? एक तो ये कि खुद ही मुसलमान बन जाते हैं, बात ही खत्म हो गई। तो दूसरी बात ये है कि खुद तो मुसलमान नहीं हुए, इस्लामी हुकूमत को कबूल कर लिया, खुद फिदिया देकर रहने पर राजी हो गए। तो आपने जो है फिर यहाँ पर उसकी जो है वो इजाजत दी जा रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि अब उनको फिर कुछ जुल्म ना करना। अगर वो बाज आ जाए तो समझ लो कि जालिमों के सिवा फिर किसी और पर ज्यादती नहीं की जा सकती, सिर्फ जालिम जो है ना उन्हीं पर ज्यादती जो है वो की जा सकती है। तो मुझे जैसे आपको एक नाम, तो पहले आप में से कोई ये पूछना चाह रहा था कि एक नाम बताया है जिसको कत्ल किया गया है ना, तो दूसरा नाम जो है वो उकबा बिन अबी मोईत है, तीसरा नाम नदर बिन हारिस का कत्ल था। और फतेह मक्का के बाद आपने 17 आदमियों को आम माफ कर दिया था, लेकिन जो 4 लोगों को सजाए मौत दी थी उनमें से मैंने आपको 2-3 नाम जो है वो बताए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हरामी वल हुरुमातु किसास, माह हराम का बदला माह हराम ही है और तमाम हुरमतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। तो इससे मुराद क्या है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से अरब में ये रवाज चला आ रहा था कि जिलहज, मुहर्रम और रजब के जो महीने थे जिसमें वो जंग नहीं करते थे, कत्लो गारत नहीं करते थे, और खास तौर पर खाना काबा में आते थे और हज और उम्रे के लिए उन्होंने इसको मखसूस कर रखा था। फिर ये महीनों को वो हुरमत वाले महीने कहते थे कि जान माल अब हराम है, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। तो अब दूसरा क्या था कि इन्हीं महीनों में उनकी तिजारत भी होती थी, जब सुकून मिलता था तभी बिजनेस होगा ना, जब हर वक्त खाना जंगी, कत्लो गारत, लड़ाई झगड़े होंगे तो वहां तो कोई सुकून नहीं होगा। जैसे कराची कोई देख लें, कभी वो पाकिस्तान कहा जाता था, पाकिस्तान का दिल, अब कराची में जो झगड़े, लड़ाइयां, कत्लो गारत, खाना जंगी, तो अब बिजनेसमैन भी वहां से उठ गए, लोग घर वहां पे लेना नहीं चाहते, सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, है ना? तो लोग पैसे लगाने से, रकम लगाने से पहले ये सोचते हैं कि यहाँ बिजनेस क्या होगा, मुआश का क्या होगा, तिजारत का क्या होगा, तो वो सुकून चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि माहे हराम का बदला जो है वो माहे हराम भी है, तमाम हुरमतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। फमने तदा अलैकुम, पस जो कोई तुम पर ज्याती करे, फातदू अलैहि बिमिस्ली मा तदा अलैकुम, तो तुम भी उन पर इसी तरह ज्याती करो जैसी कि उन्होंने तुम पर की है। लेकिन ज्याती जब करने लगो तो क्या करना, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। अब लड़ाई में भी तकवा आ गया। आमतौर पर लड़ाई में क्या होता है कि कहते हैं ना, जंग में और गुस्से में सब कुछ जायज है, मोहब्बत और जंग में और गुस्से में भी लोग कहते हैं सब कुछ जायज है, मोहब्बत में भी वैलेंटाइन डे मनाएं, है ना, इसी तरह जंग में भी जो मर्जी करें, अस्पतालों को निशाना बना लें, बच्चों को निशाना बना लें, बम का स्कूलों को बना लें, जो मर्जी करें, तो ये ज्यादतियां जो हैं वो ठीक नहीं है। और ये क्यों कहा अल्लाह ताला ने कि वो तुम पे दस्त दराजी करें तो तुम भी करना, लेकिन जब करना तो डरते हुए रहना। इसकी एक वजह थी, अरब लोग क्या करते थे कि उन्होंने एक नसी का कायदा बना रखा था, नसी, अगर किसी से उन्होंने कोई इंतकाम लेना होता था तो क्या करते थे कि जंग छेड़ देते थे, किसी भी हराम महीने में उस पर हमला कर देते थे और फिर किसी और महीनों को उसकी जगह हलाल महीने को हराम कर लेते थे। जैसे 4 महीने मैंने आपको बताया ना कि जिलकद, जिलहज, मुहर्रम और रजब, इन 4 महीनों में वो जंग नहीं करते थे ना। अब वो क्या करते थे कि किसी भी कबीले पे हमला करना चाहते हैं तो इन महीनों में से किसी पर हमला करते थे। दूसरा शख्स तो ये समझता था ये हुरमत वाला महीना है ना, वो जंग के लिए तैयार नहीं होता था, तो इस महीने में जाकर एकदम हमला करते थे और फिर उसके बाद जो है किसी और महीने को कहते थे कि अब इसकी जगह हमने ना ये महीना अपने ऊपर हराम कर लिया है। तो मुसलमानों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि अगर कफार अपने नसी के हीले को, निस्यान मिटा देना है ना, कि एक चीज को मिटा कर दूसरी चीज उसकी जगह ले आए, है ना, अगर वो नसी के कानून को अपनाएं तो मुसलमान क्या करेंगे? यानी वो तो होगा हराम नहीं ना, उन्होंने तो जंगी कार्रवाई कर ली, तो मुसलमान क्या करें, इसका जवाब क्या दें? जंग करें तो फिर हराम महीने में जंग करना तो सही नहीं है, ना करें तो आके मार रहे हैं, आप क्या करें? तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा अगर वो हराम महीने का ख्याल करे तो तुम भी करना, अगर वो इसमें कोई जंग कर दे तुम पर आके हमला कर दे फिर तुम उसका जवाब देना, तुम्हें अपनी मदाफियत की पूरी पूरी इजाजत है, बस ज्यादती ना करना। जब भी करो तो क्या करना, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना, वालमू, और खूब जान लो अन अल्लाह माल मुत्तकीन, के अल्लाह जो है वो तकवा वालों के साथ है। आप देख लें कि गुस्से की हालत हो, इनफरादी लड़ाई हो या इज्तमाही लड़ाई हो, कोई भी लड़ाई हो उसमें अल्लाह का डर जरूर होना चाहिए। एक तो ये कि बदला लिया जा सकता है, ज्यादती नहीं की जा सकती है ना, वो के माफ करने को पसंद किया गया है, लेकिन इज्तमाही तौर पर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बदला लिया जा सकता है। अल्लाह किन लोगों के साथ मिलता है जो मुत्तकी हैं, अल्लाह ज्यादती करने वालों के साथ नहीं है। हम अल्लाह को ढूंढते हैं ना, अल्लाह को चाहते हैं ना, तो अल्लाह भूखों के साथ मिलता है अगर उनको हम खाना खिला दें। अल्लाह जो है वो इन लोगों के साथ मिलता है जो भूखे हैं, जो मजलूम हैं, जो मकतूल हैं, सही है ना। तो हमें तकवा की रवि जो है वो अपनानी है। फिर फरमाया वा अन्फिकू फी सबीलिल्लाही, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, वला तुल्कू बेअईदीकुम इलत तहलुका, और अपने हाथों अपने आप को हिलाकत में ना डालो। तो अब क्या है कि तुम अल्लाह के दीन को कायम करने चले हो तो माली कुर्बानियां भी करना, माल को खर्च करने की जरूरत पेश आए तो उसको बचा कर ना रखना। अपना माल खर्च करोगे तो क्या है कि अल्लाह को ये चीज बहुत पसंद है, और अगर हम अल्लाह के दीन, यानी जब भी खर्च करो तो किस लिए करना, वान फिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, इसलिए ना खर्च करना कि लोग तुम्हें कहें कि ये बहुत जो है वो खर्च करने वाला सखी है, दाता है, सखावत करता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, और क्या करना, अपने हाथों अपने आप को हिलाकत में ना डालो। तो इसका क्या मतलब है, अपने हाथों अपने आप को हिलाकत में ना डालो? इससे मुराद ये है एक ऐसे शख्स की तस्वीर अल्लाह ताला ने खींची है जो ऊपर से नीचे अपने दोनों हाथ फैलाए हुए किसी दरिया या किसी गार में या किसी ऐसे खड्ड में छलांग लगाने को तैयार हो। मतलब अब आप देखें कि हाथ की कमाई है ना, अल्लाह आपने कमाई की, अल्लाह ने बरकत दी, अल्लाह की दी हुई इमानत है ना, तो उसको अल्लाह के रास्ते पे खर्च करना चाहिए चाहिए। अब हाथ बांधे हुए हैं, पैसे हाथ में आ गए उसको जमा किया जा रहा है, हाथ बांधे हुए हैं और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये शख्स जो है ये समझ रहा है कि माल बचा रहा है तो ये खजाना है, माल का खर्च ना करना वो गड़ा है जिसने वो छलांग लगा रहा है, अपने हाथों अपने आप को गड़े में फेंक रहा है। यानी अल्लाह की राह में जान को भी लड़ाना चाहिए और उसके साथ साथ माल की कुर्बानी भी करना करनी चाहिए। तो ये है कि अपने हाथों अपने आप को हिलाकत में ना डालो से मुराद क्या है कि जिस माल को बचा रहे हो इसको तुम जिंदगी समझ रहे हो, बल्कि उल्टा क्या है कि माल का बचाना, इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना, ये तो मौत है, ये तो हलाकत है। तुम माल के हरीस हो और माल के बचाने को कामयाबी समझते हो तो ये क्या है कि ये तो गड़ा है, ये तो तबाही है। वह आसिनू, और एहसान का तरीका इख्तियार करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह जो है वो मुहसिनीन को, एहसान करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह को ये पसंद है कि उसके रास्ते में जान भी खर्च की जाए और उसके रास्ते में माल भी खर्च किया जाए। हजरत अबू अयूब रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि ये आयत हम अंसार के बारे में नाजिल हुई, जब अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी और इसके मददगार बहुत हो गए तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलैहदी में एक दूसरे से कहा कि बिला शुबा हमारे माल खर्च हो गए। अब अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी है और इसके मददगारों को ज्यादा कर दिया है, तो अब अगर हम अपने अंबाल संभाल रखें और जो कुछ खर्च हो चुका है इसकी तलाफी शुरू कर दें तो कोई बात नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमा दी और जो कुछ हमने आपस में कहा था इसकी तरदीद करते हुए फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करते रहो और अपने आप को हलाकत में मत डालो। हलाकत से मुराद अम्वाल की निगरानी, इनकी इस्लाह और जिहाद को छोड़ देना है। ये बुखारी की रवायत है। तो ये है कि जिससे जो है हमें पता चलता है कि अपने आप को हिलाकत में नहीं डालना। एहसान के दर्जे की नेकी, यानी काम करना है पर दिल से करना है। जैसे जकात फर्ज है, वो भी लोग देते हैं तो रोते धोते देते हैं कि कैसे दें ना, इतने पैसे जब दे रहे होते हैं ऐसे लग रहा होता है कि बहुत सा माल निकल रहा है, दिल घट रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सिर्फ अताअत ना करना, एहसान के दर्जे की नेकी करना, और एक ये कि उसको ऐसे ही कर देना, और एक मोहब्बतों के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, प्यार के साथ, चाहतों के साथ करना। हदीस में है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब तमाम सहाबा के सामने अजनबी सूरत में आपके पास आए और आपसे पूछा कि एहसान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि एहसान यह है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे जैसे तू उसे देख रहा है, और अगर तू तुझसे ये ना हो सके तो कम से कम ये समझे कि अल्लाह तुझे देख रहा है। और ये तो जाहिर है ना, अगर हमें ये एहसास हो कि एक तो ये कि अल्लाह को मैं देख रही हूं, तो ये बहुत आला है एहसान का दर्जा इबादत का। ये नहीं तो अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फितरी बात है कि इंसान जो है उसके अंदर बहुत ही जो है वो एक फिक्र होती है, और वो काम को बहुत बना संवार कर शरई अहकाम की पाबंदी के साथ, दिल की रगबत के साथ, दिल की मोहब्बतों के साथ करता है, इसको एहसान कहते हैं। और पहले हमें पता चला अल्लाह किन लोगों के साथ है, इन अल्लाह माल मुत्तकीन। अब अल्लाह साथ तो है पर पता नहीं मोहब्बत करता है कि नहीं, तो किन लोगों से मोहब्बत करता है, इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। व अतिमुल हज वल उमरा लिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज और उम्रे की नियत करो तो उसे पूरा करो। इससे मुराद क्या है कि जब भी जो है वो हज और उम्रे की नियत कर ली जाए तो फिर उसको पूरा करना चाहिए। और बाज लोग कहते हैं कि ये जो आयतें हैं ये 196 से, ये उस जमाने में नाजिल हुई 6 हिजरी में। मुफस्सरीन इस पर मुत्तफिक हैं कि ये वाकया सुलह हुदैबिया का है। आठ आयतें थी जो नाजिल हुई, इनमें पहली आयत यही थी कि अतिमुल हज वल उमरा लिल्लाह। तो 6 हिजरी में जो सुलह हुदैबिया का वाकया था उसमें क्या मकसद था कि मुसलमान जो थे वो उमरा करना चाह रहे थे, और प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था, लेकिन ये कि जो है वो अहले मक्का ने आपको उमरा मुकम्मल करने नहीं दिया है ना। तो अब दरअसल यहाँ पे इसका मकसद क्या है, हज की फर्जियत बताना मकसद नहीं है, वो तो पहले ही बताई जा चुकी है, लेकिन इस जगह हज और उमरे के कुछ खास अहकाम बताना जो है वो मकसूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए, क्योंकि लिल्लाह लिल्लाह से अल्लाह की खुशनुदी का पता चलता है कि जब तुम हज और उम्रे की नियत करो किस लिए, लिल्लाह ही अल्लाह के लिए, तो फिर क्या करो उसे पूरा करो। अब पूरा करना चाहते हैं लेकिन जो है कोई भी मजबूरी है, कोई भी परेशानी आ रही है, पूरा तो करना चाह रहे हैं, अब क्या करें। इस सिलसिले में यानी अब क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला कहते हैं फाइन ओ सिर तुम, अगर तुम घेर लिए जाओ, फमस कई सरामिन अलहदी, तो जो कुछ मुयस्सर हो कुर्बानी में से, तो क्या करो तो जो कुर्बानी मुयस्सर है वही दे दो। अब आप देखेंगे सुलह हुदैबिया के मौके पर क्या था कि मुसलमान जब गए तो वो गए तो उमरे की नीयत से थे, लेकिन अब अहले मक्का उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, जाने ही नहीं दे रहे, तो अब क्या है कि वो घेर लिए गए हैं, दुश्मन की तरफ से घेर लिए गए हैं। और मक्का पे किसका कब्जा था, मुशरिकीन कुरैश का। उन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों को मक्का से निकाला बल्कि किसी कीमत पर वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि मुसलमान जो हैं वो खाना काबा या मक्का की तरफ रुख भी करें। तो अगर मुसलमान हज या उमरे का रुख करते हैं या इरादा करते हैं तो क्या है कि फिर जो है वो रोकते, रुकावट डालते, घेरते या नुकसान पहुंचाते। तो तब उन्होंने उस वक्त भी मुजाहमत की, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि हो सकता था, क्योंकि वहां पे कबायली निजाम था ना कि मुसलमान या कोई भी हज और उमरे के लिए आ रहा है तो कोई उसको रोक ले, वो घेर लिए जाए, कोई बदअमनी की हालत पैदा हो गई है, क्योंकि वहां के हालात भी ऐसे थे कि लोग घेर लेते थे, लोग पकड़ लेते थे। तो और आज के दौर में भी ऐसे हो सकता है कि कोई भी जा रहा है, किसी भी वजह से उसको घेर लिया जाए, उसको रोक लिया जाए, कुछ भी उस पर बात हो सकती है। तो अब ऐसा हो जाए, यानी फाइन ओसिर तुम, कि अगर तुम घेर लिए जाओ तो क्या करना है, समस्तई सरा मिनल हदीये, तो तुम जो कुर्बानी मुयस्सर है उसे जो है वो पेश कर दो, यानी जो भी आपको रकावट पेश आई है और उस रकावट की वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो अब क्या है कि अब वो कुर्बानी जो है वो अल्लाह के लिए उसको जो है वो कुर्बान कर दिया जाए। अब इसमें आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हजरत मसूर बिन मखरमा कहते हैं कि हम हुदैबिया के जमाने में जब निकले तो बुदैल बिन वरका आया और कहने लगा कि वो कुरैश आपसे लड़ेंगे और आपको बैतुल्लाह जाने से रोकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लड़ने नहीं आए, हम तो उमरा करने आए हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, उठो कुर्बानी करो और अपने सर मंडवा दो। फिर आपने अपनी कुर्बानी ज़िबा की, फिर हुज्जाम को बुलाया, इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुंडा। ये बुखारी की रवायत है। इसी तरह हजरत दबा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह से पूछा, अल्लाह के रसूल मेरा हज करने का इरादा है लेकिन मैं बीमार हूं, ऐसी सूरत में क्या करूं? आपने जवाब दिया, हज करो और अल्लाह से शर्त कर लो कि अल्लाह मैं इसी जगह अहराम खोल दूंगी जहां तू मुझे रोक देगा। तो ये भी रुकना है, ओ सिर तुम है, ये मुस्लिम की रवायत है कि बीमारी है और अब वो हज करने जा रही हैं, लेकिन अगर कहीं रुकावट आ गई, अब इतनी बीमारी बढ़ गई कि अब बीमारी ने उनको रोक लिया, वो जा नहीं सकती, तो उस वक्त नियत में ये बात करने की, वही जो मैं अहराम जो है वो खोल दूंगी। तो ये है इसका मतलब कि फाइन ओ सिर तुम समझते ही सरा मिनल हदीये, तो जो कुर्बानी मुयसर आए तो उसको अल्लाह की राह में जो है वो दे दो, उसको अल्लाह की जनाब में जो है वो पेश कर दो। तो इस सिलसिले में क्या है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुदैबिया ही में कुर्बानी करके अहराम जो था वो खोल दिया। तो इसमें एक राय ये भी है कि ऐसा भी किया जा सकता है कि कुर्बानी जो है वो हरम तक के इलाके में पहुंचाने की कोशिश की जाए, ठीक है, दुश्मन ने रोक लिया है, खुद पहुंचना मुमकिन नहीं है लेकिन हो सकता है कुर्बानी कोई वहां पे कर दे या वो वहां पे पहुंच सकती हो, तो ये शक्ल निकाली जा सकती है, वरना फिर वहीं पेश कर दी जाए, वहीं कुर्बानी जो है वो कर दी जाए। वला तहलिकु रउसाकुम, और तुमने अपने बालों को नहीं काटना, नहीं उनका अपने सरों को मुंडवाना, हत्ता यबलुगुल हदयु महिल्ला, जब तक के कुर्बानी अपनी जगह न पहुंच जाए। कुर्बानी के अपनी जगह पहुंचने से क्या मुराद है? कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आदमी रास्ते में रुक गया है, उसको मजबूरी है, तो कुर्बानी का जानवर या इसकी कीमत जो है वो हदूदे हरम में भेजे, वहां पे उसकी कुर्बानी होनी चाहिए। एक राय तो ये है अपनी जगह पहुंचने से मुराद महिल्ला। कुछ लोगों का ये राय है कि जब आदमी घिर गया है तो वही कुर्बानी कर दे, तो अपनी जगह, यानी अल्लाह, असल तो अल्लाह के पास पहुंचना है ना, जब वो खुद ही नहीं पहुंच पा रहा तो कुर्बानी कैसे पहुंचे? तो अगर वो खुद पहुंच जाए तो वहीं जाके कुर्बानी करेगा, अगर खुद नहीं पहुंच पा रहा और कुर्बानी किसी तरीके से पहुंच रही है तो वो उसको भेज दे, अगर वो भी मुमकिन नहीं तो अभी जो है वो वहां पे ही कुर्बानी कर दे। तो ये है कि कुर्बानी अपनी जगह पर ना पहुंच जाए। तो इससे दरअसल मुराद ये है कि अब आपने क्या करना है कि रकावट कोई हो गई है, ओ सिर तुम घेर लिए गए हो, तो पहले कुर्बानी करोगे। अगर ये सोच रहे हो कि वहां होनी है तो देखो कि हो गई कि नहीं, इंतजार करो, अगर वहां नहीं हो सकती हरम के इलाके में तो जहां पे है वही करोगे, जब कुर्बानी हो जाएगी फिर बालों को मुंडवाना है। इसका मतलब ये है, कोई लंबी चौड़ी या मुश्किल चीज इसमें नहीं है, अब जब कुर्बानी हो जाए तो फिर बाल कटवाने हैं। तो जब हरम में लोग हज पर जाते हैं, आप लोग हज करके आए हैं, तो उस वक्त आप अपने बालों को कब काटते हैं? उधर से कुर्बानी बात होती है कि कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी हो गई है, उधर से आप जो है बालों को कटवाने के लिए चले जाते हैं, अलग कर रहे हैं या तकसीर कर रहे हैं। मर्द जो है वो तो सर मंडवाते हैं, औरतें तो थोड़े से जो है वो काट लेती है। तो ये चीज क्लियर होगी यहां तक, आगे चलते हैं। फमन काना मिनकुम मरीदन, अब जो शख्स मरीज है, अब कोई शख्स बीमारी हो गया है, ठीक है ना, तो ये हदीस भी हमने अभी मैंने आपको बताई, वो सहाबिया का वाकया भी सुनाया कि बीमारी आ गई है, उसका तरीका भी आपको पता चल गया। और बेही अजम मिर्रा से ही, या उसके सर में कोई तकलीफ है, जैसे अब कोई शख्स है उसको रोका किसी ने नहीं, उसको कोई दुश्मन ने घेरा नहीं, उसको कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये कि अब वो हो ही बीमार गया है, दुश्मन ने तो नहीं देखा, बीमारी ने उसको आके पकड़ लिया है। कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं, बस सर के अंदर कोई तकलीफ हो गई है, सर में जुएं पड़ गई हैं, मुश्किल है, कोई भी सर के अंदर जो है वो खुश्की है या तकलीफ है, जो कुछ भी है वो ऐसी है कि अब जरा एहराम की हालत में मुश्किल होती है, अगर कोई भी ऐसी सर की बालों की कोई तकलीफ हो जाए, सर को कोई तकलीफ हो जाए, तो अब क्या करना चाहिए। फमन काना मिनकुम मरीदन, अगर तुम में से कोई मरीज हो, और बेही अजम मिर्रा से ही, या इसके सर में कोई तकलीफ है, अब वो क्या करेगा, तो अब क्या है, अब उसको फिदिया देना है। फिदिया तुम मिन से आमिन, तो उसको फिदिया देना है, मिन से आमिन यानी रोजे रखे, फिदिया या तो रोजे हो सकते हैं, और सदाकतिन या वो सदका देगा, कुछ पैसे देगा, और नुसुक या वो कुर्बानी करेगा। तो अब जो है वो कितनी कुर्बानी करे, वो कितने रोजे रखे, वो कितना सदका दे, ये चीज भी हमें हदीस से पता चलती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको कुर्बानी ना मिले वो 3 रोजे रखे अयामे हज में, और 7 अपने घर पहुंचकर। इसी तरह काब बिन उजरा कहते हैं रजी अल्लाह अन्हो कि हम हुदैबिया में रसूल अल्लाह के साथ थे, एहराम बांधे हुए थे, लेकिन मुशरिकीन ने हमें उमरे से रोक लिया, मेरे लंबे बाल थे और जुएं मेरे मुंह पर गिर रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो फरमाया कि सर की जुएं तुम्हें तकलीफ पहुंचा रही हैं, मैंने अर्ज किया जी हाँ, तब यह आयत नाजिल हुई, फमन कान मिनकुम मरीदन और बही अजम मिर्रा से ही फिदयतुन मिन सियामिन और सदकतिन और नुसुक। तो ये आयत भी बुखारी की जो है वो रवायत है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे कि सर मंडवाओ, 3 रोजे रखो, या 6 मिसकीनों को खाना खिलाओ या कुर्बानी करो। सही है। फाइजा अमीन, तुम जब तुम अमन में आ जाओ, अब जो इससे ये पता चलता है कि दुश्मन का घेरना भी मुराद था, ओ सिर तुम, अब अमन आ गया ना, वो घेरा खत्म हो गया, या जो बीमारी थी उसके घेर से बाहर आ गए, वो मुश्किल खत्म हो गई, अब क्या है कि तुम अमन में आ गए, तुम्हें अमन नसीब हो गया, तुम्हारी वो मजबूरी वो सबब खत्म हो गया जिसकी वजह से तुम रास्ते में रुक गए थे, तो अब क्या करोगे। फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज्जी, तो जो शख्स उम्रे से फायदा उठाए हज के आने तक, फमस तई सरा मिनल हदी, तो उसको चाहिए कि वो कुर्बानी दे। हज की 3 किस्में हैं, एक हज इफराद है, फर्द से है, फर्द अकेला होता है ना, जैसे अफराद बहुत से होते हैं ना, तो उसमें अकेला जब बंदा सिर्फ उमरा, इसका मतलब नहीं अकेला उमरा हज कर रहा है और कोई भी नहीं है, लोग तो बहुत से हैं लेकिन वो हज के साथ उमरा नहीं कर रहा, हज इफराद। दूसरा है हज किरान, कर्न से है, कर्न का मतलब होता है मिलाना, तो हज और उमरा दोनों का एहराम इकट्ठा बांधना, मिकात से ही हाजी ने जब एहराम बांधा तो हज के साथ ही एहराम की भी नियत कर ली, ये हज किरान है। इसी तरह हज तमत्तो है, यहाँ पे फमन तमत्ता आके वर्ड भी आ पड़ रही है ना, हज तमत्तो में क्या है कि मिकात से ही हाजी ने ये नियत तो की कि मैंने उमरा भी करना है हज भी करना है, लेकिन उसने ये नियत की कि दो एहराम में मैं हज और उमरा करूंगा, पहले उसने ये नियत की कि मैं एहराम बांधूंगा और मैं जाके उमरा करूंगा, उमरे के एहराम की नियत की, और जो ही उसने उमरा किया एहराम उतार दिया। फिर जब 8 जुलहज को मीना की तरफ जाने का वक्त आया तो जिस जगह वो उसका कयामगा है वहां से फिर उसने एहराम बांध लिया, तो अब उसने हज का एहराम बांधा। तो अब क्या है कि सफर एक ही है, कर्म दोनों काम रहा है हज और उमरा, लेकिन उसका फायदा क्या है कि बीच के जो दिन थे ना 8 जुलहज से पहले के दिन, जितने भी वो दिन पहले गया है उससे वो फायदा उठा रहा है, उस पर एहराम की कोई पाबंदी नहीं है, इसको कहते हैं हज तमत्तो, फायदा उठाने वाला हज। तो उमरा भी किया हज भी किया, एहराम की पाबंदी बस थोड़े दिन रही, जितने दिन उसने जितने वक्त उसने उमरा करना था या हज करना था। अच्छा, चूंकि एक सफर में जो लोग हज और उमरा इकट्ठा करते हैं तो शुक्राने के तौर पर उनको कुर्बानी कर दी चाहिए। जो हज इफरात करते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो कुर्बानी करें, अगर वो करना चाहें तो कर दें। मतलब जैसे यहाँ पे जो हज नहीं कर रहे, जो बाहर लोग रह रहे हैं, हज हाजी नहीं है, आम दुनिया में जो मुसलमान है वो भी तो उस मौके पर कुर्बानी करते हैं ना। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगर ना करना चाहें, हज के जो मनासिक है उसमें से फिर कुर्बानी उनके लिए लाजिम नहीं है। पॉइंट ये है समझने वाला, जो हज तमत्तो करें या हज किरान करें उनके लिए कुर्बानी करना भी लाजिम है। ठीक है, किरान करने वाला एक ही एहराम में हज और उमरा कर रहा है, हज तमत्तो करने वाला दो एहरामों में उमरा और हज कर रहा है तो फायदा उठा रहा है। तो अब अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहे हैं कि तुम में से जो कोई उमरा कर ले हज के आने तक, समझते सरा मिन अल हदी, तो जो कोई भी कुर्बानी में से मुयसर है उसको अल्लाह के रास्ते में दे दो। अमल नम यजिद, अब किसी के पास कुर्बानी नहीं है पर उमरा उसने कर लिया है हज के साथ साथ, अब वो क्या करे? फसियामु सलासते अयामिन, तो अब 3 दिन जो है वो रोजे रखेगा फिल हज, हज के दिनों में। हज का जमाना मुशक्कत का जमाना है, शहरी नहीं मिली, शहरी मिल गई इफ्तारी नहीं मिली, लेकिन ये कि अब बात तो बहुत बड़ी है कि उसको उम्र की सादत नसीब होगी। अब तुम्हें रोजे कुर्बानी पे ऐसे नहीं है कुर्बानी कर सको, अब क्या करो? अपना रोजे रख लो, 3 दिन वहां पे रख लो, वह सब अतिन इजा रजा, तुम 7 दिन तब रखो जब तुम घर लौट आओ, अपने घर आ गए, अब बाकी 7 रोजे तुम पूरे कर लो। तिलका अशरतुन कामिला, ये 10 मुकम्मल रोजे हैं। ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, ये रियायत उन लोगों के लिए है जिनके घर बार मस्जिद हराम के करीब ना हो। यानी ये हज और उम्रे की रियायत इकट्ठा एक ही सफर में करना किन लोगों के लिए खास तौर पर है? जो दूर से आए हैं। क्यों? इसलिए कि जमाना जाहिलियत में एक ही सफर में जो है वो अरब लोग हज और उम्रा दोनों को करना गुनाह अजीम समझते थे, और इनके खुद साख्ता शरीयत में उम्रे के लिए अलग सफर करना, हज के लिए अलग सफर करना जरूरी था। अल्लाह ताला ने इस कैद को खत्म कर दिया, ऐलान कर दिया कि बाहर से आने वालों के लिए ये रियायत है कि वो एक ही सफर में उम्रा और हज जो हैं वो दोनों कर सकते हैं। अलबत्ता जो लोग मक्का के इर्द गिर्द रहते हैं, मीकात की हदूद के अंदर रहते हैं, उन्हें इस रियायत से मुस्तस्ना कर दिया गया, क्योंकि उनके लिए उम्रे का सफर अलग करना और हज का सफर अलग करना कुछ मुश्किल नहीं है। तो हज का जमाना आने तक उम्रे से फायदा उठाने से मुराद क्या है? कि आदमी उम्रा करके एहराम खोल देता है, एहराम की पाबंदियों से आजाद हो जाता है, जो एहराम ने पाबंदियां उस पर लगाई हैं, तो अब फिर क्या है कि वो फायदा उठा रहा है ना, फितरी सी बात है। तो ये है कि अब वो कि ये रियायत किन लोगों के लिए है? लम यकुन, जो रहते नहीं है हरम के इलाके के इर्द गिर्द। वत्तकुल्लाह, डरते अल्लाह से रहना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना। तुमने खुद से अकीदे बना लिए कि एक सफर में हज और उमरा नहीं हो सकता, अपनी रस्मों को मत निभाना। तुमने ये समझ लिया कि घर के पीछे से जब घर में दाखिल होना है हज और उमरा करके, तो पीछे के दरवाजे से पीछे की तरफ से जाना है, सीधे रास्ते से सीधे दरवाजे से दाखिल होना, ये कोई तकवा की और नेकी के काम नहीं है। असल चीज क्या है? अल्लाह से डरते रहो। वालमु, और खूब जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है।